أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات بھیجی محمد علی محمد پر دارا نے اپنے آپ سے درخواست کروں گا پہلی مجلس سے مجالس کی میرے حصے کی آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت کے لیے خاص طور پہ ہمارے شہید حجت الاسلام والمسلمین والمسلمین علامہ حسن تراوی صاحب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر اس سے بہتر انداز مل کر بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا بس سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں اور یہ مومین کا ہی خاصہ ہے کہ پے در پے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جتنی مجالس ہوں ماشاءاللہ میں تو یہاں تک دیکھا کہ وہ رات ڈیڑھ بجے تک بھی مجلس ہوتی رہے مومین کا سلسلہ جاری رہتا ہے مومین کے آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے ماشاءاللہ اور بس جس کا ذکر ہے اصل میں وہی برکت دے رہا ہوتا ہے ہماری آپ کی ہمت کی بات نہیں ہوتی وہ تو اللہ کا اور جس کا معاملہ ہے نا آپس میں حسین کا اور اللہ کا معاملہ ہے جس کا ذکر ہے جو کروانا چاہتا ہے تو ہم ہو یا نہ ہو تو ہمیشہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہنا کہ تمہاری وجہ سے عزاداری ہوتی ہے یا ہماری وجہ سے عزاداری ہوتی ہے فلاں پڑھنے والا ہوگا تو مجلس ہوگی فلاں پڑھنے والا نہیں ہوگا تو مجلس ہوگی اور فلاں پڑھنے والا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی فلاں جمن ہوگی تو ماتم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں یہ اگر کہیں بھی کوئی خیال یا گمان کرتا نا تو سمجھ لیجیے کہ باطل خیال ہے یہ خیال ہے باطل ہے یہ گمان باطل ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ ذکر حسین کو زندہ کرے یہ ذکر حسین آپ کو اور مجھے زندہ رکھتا ہے ہم اور آپ کو جو زندہ رکھتا ہے نا یہ ذکر حسین ہے اس نے ہمیں عزت دی ہے دنیا کی قوموں میں ہماری عزت ہماری پہچان کیا ہے اور دیکھ لیجیے چہروں پہ پتا چل جاتا ہے اگر ابھی یقین نہیں آتا میری بات کا چہروں پہ دیکھ لیجیے گا پوری دنیا کا سر جھک جاتا ہے کہ عجیب قوم ہے بھائی یہ کروڑوں کی تعداد میں خالی ہاتھ جا رہی ہے خالی ہاتھ اور دنیا ڈر رہی ہوتی ہے خود کچھ بمباروں سے نہیں ڈر رہے ہوتے وہ خالی ہاتھ 4 کروڑ آدمی جا رہے ہیں ان سے وہ ڈر رہے ہیں خالی ہاتھ حالانکہ ان کے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے مرد ہیں عورتیں بچے ہیں چھوٹے بچے بوڑھے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں چلے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء یہ وہ معجزہ ہے یعنی اللہ کا ایک انعام ہے ہمارے لیے کہ جو اس سے وابستہ ہے اس کے لیے اللہ نے سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں رکھا چاہے وہ زندہ ہو چاہے مار دیا جائے ایسی نا پتہ نہیں کتنے قتل کتنے مر جاتے ہیں لیکن حسین کے نام پہ مرنے والا کبھی مرا نہیں مرا نا بھائی موت تو آنی تھی سب کو آنی ہے موت مجھ میں آپ میں کون زندہ رہے گا سارے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری تو تمنا یہ ہوتی ہے بھائی کہ مرنا تو ہے سانسیں اتنی ہی ہیں جتنی میں لے کر آیا ہوں لیکن حسین کے نام پر موت آ جائے تاکہ میں کبھی مر ہی نہ سکوں یا یہ ہمیشہ زندہ 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 مردہ یا یہ میں نے آپ کو راز بتا دیا ہمیشہ زندہ رہنے کا ایک ہی راز ہے جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ حسین کی راہ میں مرنے کی تمنا کرتا رہے حسین اس کو کبھی بھی نہیں مرنے دے گا ہمیشہ ورنہ بتا دیجئے تاریخ میں جو حسین کے نام پہ مرا آج تک کسی کو مرنے دیا حسین نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں مر جائے حسین اس کو زندہ رکھتا ہے یعنی یہ कमाल है, ये एक मौजजा है और ये अल्लाह की अता है। हुसैन को जो राजी तम मर्जिया की मंजिल है ना, हुसैन ने वो दे दी। खैर, बस एक बात और, फिर अपने मजमून की तरफ आते हैं। ये तो क्योंकि पहली बार यहाँ अशरा पढ़ रहा हूँ, वैसे तो इक्का दुक्का मजालिस कभी पढ़ता रहा, लेकिन अशरा पहली बार पढ़ो। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे चेहरे में देख रहा हूँ कि मजलिसी मजमा जैसा माशाल्लाह। आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी भी एक शनाख्त है, 40 साल से मेंबर पे बैठ रहा हूँ, मैं पहचानता हूँ कि मजलिसी मजमा कहाँ होता है। वो उनके चेहरे बता देते हैं कि मजलिसी मजमा है। लेकिन एक बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जवानों के खास तौर पर देखो भाई, हर जगह मैं ये बात पहली मजलिस में जरूर करता हूँ, खासतौर पर जहाँ मोमिन की आवाज़ है, देखो भाई आगाज हो गया ना मुहर्रम का, अब जहनी तौर पर तैयार रहो कि कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। लेकिन बंदो, खुदा के बंदो, इतना ख्याल रखो कुछ भी हो जाए, आजादारी पर आंच नहीं आने देनी है। यानी होगा इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शरारत करते हैं ना करने वाले, दहशतगर्दी के सोचते रहे, उनके दिमाग तो इधर ही चलते रहते हैं। तो एक बात याद रखना, ये सब अगर कोई शरारत करता है तो क्यों करता है? ताकि शरपसंदी हो और इंतशार फैले, मजलिसें खराब हो, जुलूस खराब हो, तितर बितर हो जाए लोग। नहीं, जैसे आशूर पे, चेहलुक पे हर दफा आपने क्या किया, पूरी दुनिया को बताया कि लाशें उठाएंगे मगर जुलूसों के रास्तों पर आंच नहीं आने देंगे। ये करबला मसाया नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको मैं हौसला देने के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि शहजादे अली अकबर ने क्या पूछा था बाबा से दोपहर का, जब सब आधे से ज्यादा शहीद हो गए, पूछा बाबा हक पर है ना, हम हक पर है ना। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अल्लाह और उसका रसूल जानता है, हम हक पर है, कब फिर क्या परवाह, यानी मुसीबतों की परवाह नहीं, कब फिर कोई परवाह नहीं, कितनी मुसीबतें आनी आ जाए, हक पर है ना। तो हर मोमिन अपनी जगह पहले ये सोचे कि हक पर है या नहीं है, किसके लिए? खुदा के बंदो, अगर सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनी है, तुम्हारे पीछे पड़ी है, तो क्यों पड़ी है? तुम हक पर हो जब तो पीछे पड़ी है। यहां के मकामी दुश्मन हो, मकामी गुमाश्ते हो, बैनुल अक्वामी साम्राज्य ताकते हो, सब आखिर तुम्हारी ही दुश्मन क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि पूरी दुनिया सरेंडर कर सकती है। जाओ चले जाओ, वो खुदा के बंदो हुर बनो, हुर पूरे लश्कर में अकेला हुर पहचाना था कि बका कहां है, बका हमेशा की जिंदगी कहां है, तलवारें खाने ही में तो बका है। तो जब मुश्किलों से घबराया करो तो ये सोच लिया करो हक पर हो के नहीं हो। और खुदा के बंदो, जब हक पर हो तो बातिल किसके पीछे भागेगा, किससे लड़ेगा? हक ही लड़ेगा ना, शिकार हो तो क्यों? इसलिए कि जो मैंने आयत पढ़ी, मैं मजमून की तरफ आ रहा हूं, आप जिसको नहीं मालूम बता देता हूं, मोमिन और आजमाइश, मेरा उनवान यही है ना, तकारीर का आपने पढ़ लिया, नहीं तो मैंने आपको बता दिया, मोमिन और आजमाइश। पूरा कुरान मजीद कितने मकाम आते भी बताते चले जाएंगे आपको, छोड़ूंगा थोड़ी तुमको। जो भी ईमान लाने का दावा करेगा, आप मोमिन की बात कर रहे हैं, अंबिया को भी मनसब मिलेगा तो इम्तिहानात की मंजिलें देखकर मिलेगा। मैंने क्या अर्ज किया? अंबिया को भी अगर मनसब मिलेगा, पैगंबरों को, रसूलों को भी मनसब मिलेगा, मनसब अलग अलग है ना, तिलकर रसूल फजलना बाज़हुम अला बाज़, सारे नबी एक जैसे नहीं है, बाज रसूलों में भी बाज को बाज पर फजीलत है, कुछ साहिब किताब है, कुछ उलुल अज़्म है, कुछ सिर्फ बशीर है, कुछ नजीर है, ऐसे ही है ना, कुछ रसूल है, कुछ पैगंबर है, ऐसे ही है कि नहीं है? और कुछ के हिस्से में जिहाद लिखा, इतना बड़ा फिरौन और नमरूदों से टकराना, इन ताकतों से टकराना है कि नहीं? तो जब रसूलों को एक जैसा नहीं रखा, तिलकर रसूल फजलना बाज़हुम अला बाज़, हमने रसूलों में भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, तो क्यों इम्तिहान का मैदान? जब तक इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, मनसब भी पूरा नहीं लिया जाएगा, यहां तक कि जनाब इब्राहिम को इमाम बनाना था, बनाना था ना, इमाम बनाना था, रसूल थे, खलील थे, सब थे, नबी थे, रसूल थे, खलील थे, एक मनसब देना था, ऐसा मनसब देना था कि जनाब इब्राहिम ने, रसूल होने पे फख्र नहीं किया, खलील होने पे फख्र नहीं किया, नबी होने पे फख्र नहीं किया, लेकिन जो ये मनसब मिला, बेसाख्ता पुकार उठे थे, इस पर तो आप सुनते रहते हैं मजालिस, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं, पहले बाइज़िंतला बगैर आजमाइश के नहीं मिलेगा, आजमाइश में डाला बाइज़िंतला इब्राहिम, तो अंबिया को, पैगंबरों को, रसूलों को मनसब नहीं मिले जब तक उन्हें आजमाइश में न डाल दिया गया। इसीलिए मैंने सूरह अनकबूत की दूसरी आयत, पहली तो हुरूफ मुकत्तात है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, अहसिबन नास अन युत्रकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर दिया तो नहीं यूं ही छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल आजकल के हिसाब से आपसे बात करेंगे, इत्मीनान रखिए। और एक बात और याद रखिए, देखिए फितने की बहुत सारी शक्लें होती हैं, खुदा के लिए अपनी आबादियों में, अपनी मजालिस में दस बस्ता गुजारिश कर दिया कीजिए उससे जो इंतिशार की बात करें आपस में, खुदा के लिए हमारी कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम पहले बहुत जुल्म और सितम देख रहे, भैया बाहर वालों से लड़ रहे, तुम और आगे हमारे अंदर मुसीबतें डाल देते हो, अल्लाह के वास्ते मोमिनीन को न लड़ाओ, जो मोमिन को लड़ाने की बात करें समझ ले कि अपना नहीं है, माजरत के साथ। इतने तो शोर आ जाना चाहिए ना, इतने सालों में इतनी मार खाने के बाद कि यहां से बैठ के मोमिनीन को जोड़ने की बात करो, मोमिनीन को मुत्तहिद करने की बात करो, मोमिनीन के इख्तलाफी मसाइल को ना छेड़ो, कोई है मसला तो घर में रखो, समझ में आ गई बात? इतना इशारा काफी है, ये इसलिए जरूरी था, ये पैगाम भी दे देना है। क्यों हमारी आबादी में आजकल बड़ा भयानक खेल खेलने की कोशिशें की जा रही है कि मोमिनीन को आपस में, हमारे मासूम बच्चे, इन पर हाथ साफ किया जा रहा है। ये इमाम जमाना के सिपाही हैं, याद है ये बच्चे जो बैठे ना मजलिसों में, ये अमानत है, अमानत, इसमें खयानत नहीं करने देना किसी को, इन बच्चों पर जो हाथ साफ करे, इन बच्चों की जो दिमाग खराब करे, इन बच्चों को जो दीन से दूर ले जाए, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। याद रखो अपने बच्चों को इन वहशियों से, दरिंदों से, बाहर के लोग अपने नहीं है, अपनी कौम के नहीं है, इसे बचाना है आपको, समझ में आ रही है बात? आहा से बन्नास अयु तक यकुल आमन्ना, बस इतना कहने कि मैं मोमिन हूं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ये नस्से कुरानी है, बहस इसमें नहीं होगी, समझ गए आप? नस्से कुरानी पे कोई बहस नहीं है, क्योंकि आयत इलाही साफ और वाज़ह है। अहज़ब अन्नास अयुत्रकु अन यकूलु आमन्ना, क्या समझते हो तुम, क्या गुमान कर लिया तुमने, तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा सिर्फ ये कहने पर कि मैं मोमिन? अजीब है, अगर सिर्फ मोमिन होने कहने पर छोड़ दिया जाएगा तो भाई पहले वालों ने क्या किया था जो उनसे इतने बड़े बड़े इम्तिहान लिए गए? वो भी कयामत के दिन कह सकते हैं अल्लाह मियां ये खबर है, हमसे तो इतने इम्तिहान, हमें कड़ाओं में डाला गया, हमें जला दिया गया, हमारे टुकड़े कर दिए, ये ऐसे ही आ गया, मोमिनों जन्नत में चलाया और आके हमारा मुंह भी चढ़ा रहा है, देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, देखो मैं जन्नत में आ गया और तू इतने सारे अमाल करके आया, तो ये फिर अदालत इलाही कहां गई? अदल इलाही जेरे सवाल आ जाएगा ना, लिहाजा वो अदल हकीकी है, अदल होगा वहां पे अदल, लिहाजा खबरदार हासिब الناس ايتر کو یقول آمنا وهم لا يفتنون, और उन्हें आजमाइश में नहीं डालूंगा, उन्हें आजमाइश में डाला जाएगा, जो भी कहेगा मोमिन, मोमिन कहा, आजमाइश शुरू, किसी और की नहीं होगी भाई। वो जो आप कहते ना हमारे साथ ही क्यों होता है, हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, अच्छा मौला अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा था? मौला अली को लोग नमाजी मानने को तैयार ना थे, ऐसे ही है ना, ये मैं गलत कह रहा हूँ, इतना तो मालूम है आपको, उनके खिलाफ क्यों हो रहा था? इमाम हुसैन इस्लाम के साथ से 72 आदमी निकले भाई, मदद करने वाले, पूरा आलम इस्लाम ने जानते थे कि रसूल के बेटे हैं, औलाद रसूल ने जानते थे, नहीं जानते थे, रसूल सामने थे, जब जानते इमाम, समझ में आ रही है हमारी बात? कहना आसान थोड़ी है, नहीं, जब भी कोई कहेगा ईमान लाया, मोमिन हो गया, आजमाइश शुरू, ये सवाल नहीं होगा फिर कि मेरे साथ क्यों, भाई तुम्हारे साथ ही तो होगा, और किसके साथ होगा? ईमान के दायरे से निकल जाओ, फारिग हो जाओगे जाओ, लेकिन ये याद रखना कि वहां भी फारिग, यहां से तो फारिग हो ही जाओगे, वहां से भी फारिग हो जाओगे। आजमाइश में तो डाला जाएगा, आजमाइश से बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। किसी नबी को कोई मनसब नहीं मिलेगा, किसी रसूल को मनसब नहीं मिलेगा, और जो जितना आजमाइश के मैदान में आगे जाएगा उसको मंजिलें भी उतनी ही मिलती चली जाएंगी। अब बतौर कुल्ली आपको बताऊं कि आज के दौर में जो मोमिन परेशान है बेचारा, वैसे एक बात आपको बता दें कि हकीकी मोमिन परेशान नहीं होता, उसे मालूम है कि ये सब हो रहा है, कैलकुलेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़े हिसाब किताब से हो रहा है, अल्लाह के बंदो मत घबराओ, कैलकुलेटेड हो रहा है, बिल्कुल हिसाब किताब से। ये अपनी चालें चल रहे हैं, वो अपनी चालें चल रहा है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं ना, अभी मिसाल देता हूं, वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। 100 साल ढंडोरा पीटते रहे, 100 साल हमारे खिलाफ पूरी एक सदी हो गई, एक सदी से इस्लाम से बाहर करने की कोशिश नहीं की गई, नहीं की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम पर वक्त आया, मुसलमानों पर वक्त आया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि नहीं देखा, जिनके खिलाफ को नहीं देखा, वही मुसलमानों के लिए
ऐसे ही हुआ ना, देखा नहीं देखा, पूरी दुनिया ने, या अल्लाह ने उन मुनाफिकों के चेहरा से खुदा के बंदो, इसलिए कह रहा हूं परेशान मत हो, ये सारी अलामत यमन हो या शाम हो या सऊदी अरब में अमरीकी फौजियों का उतरना हो, खुदा की कसम हर रोज एक नई निशानी सामने आके बता रही है कि अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है जो उसने मोमिनीन से किया है। अभी तो पता नहीं कितने इश्क के मरहले बाकी हैं, अभी इम्तिहानात के मरहले ही मरे, घबराओ मत, اللہ کے وعدوں کی بات کر رہا ہوں۔ قوموں کے امتحان 10-20-30 سال کے نہیں ہوتے، قوموں کے امتحان صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، صدیوں پر۔ آئیے اب آپ کو لے کے جاؤں آزمائش کے میدان میں، ہے کیا مسئلہ بنی اسرائیل؟ جناب یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی بچوں کو کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا تمہاری پیروں کی زنجیر بن جائے گی، دنیا کے اسیر ہو جاؤ گے، دنیا کی لالچ آ جائے گی، باطل تم پر غالب آ جائے گا۔ جب باطل غالب آ جائے، یعنی پیشین گوئیاں کی، یہ بتا دوں آپ کو ایک انتظار کی اور غیبت کی تاریخ کی ایک طویل تاریخ ہے جس پہ میں نے اشرے پڑھے ہیں پہلے رضیہ میں، لیکن ابھی تو ظاہر ہے موضوع میرا کچھ اور ہے۔ تو بتا دیا تھا کہ دیکھو انتظار کرنا، کس کا؟ موسیٰ کا۔ کس کا انتظار کرنا؟ موسیٰ کا۔ موسیٰ آئے گا بنی اسرائیل میں، تم میں سے بنی اسرائیل، یعنی جناب اسحاق کی اولاد، یہ سب جناب یعقوب کی جو اولاد ہے یہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یعقوب کا لقب تھا، جناب یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، عبداللہ یعنی عبرانی زبان میں، تو ان کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل کہلائے وہ سب کے سب۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کی ذریت میں نبوت دی گئی ہے، یاد رکھیے گا۔ نبوت کس کی نسل میں گئی؟ لاوی، جو بھائی ہے نا دوسرے، وہ لاوی، وہ غیرت مند بھائی ہے کہ جب وہ جناب یوسف نے بن یامین کو روک لیا تھا، پکڑ لیا تھا، تو وہ رک گئے تھے نا کہ میں نہیں جاؤں گا، چاہے میں مر جاؤں، اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے غلطی کر چکے، دوبارہ غلطی نہیں دہراؤں گا، میں یہیں رہوں گا، جاؤ بابا کو حالات بتاؤ، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے یہاں پر نہیں جاؤں گا، چاہے میں مار دیا جاؤں۔ تو اس غیرت کی وجہ سے اللہ نے نبوت جناب لاوی کے صلب میں رکھی۔ جناب لاوی سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں نا، اس کا ثبوت جناب یوسف کے صلب سے کوئی نبی نہیں، جناب یوسف، ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراہیم، یہ سلسلہ ہے۔ جناب یوسف کے بعد پھر نبوت ختم، سردار ہوئے ان کے اولاد میں، لیکن نبی کوئی۔ اچھا کیوں نہیں ہوا؟ وہاں کی وجہ تو میں نے بتا دی، جناب یوسف سے نبوت کیوں لی گئی؟ یہ بھی سنتے جائیے، حالانکہ یہ والدین کے باب میں جب میں پڑھتا ہوں یہ بات تو پڑھ جاتا ہوں، لیکن چلیے کام کی بات ہے، بچوں کو یاد رہ جائے گی انشاءاللہ، بچوں کو زیادہ یاد رہ جاتی ہے، بچوں کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کا میموری کارڈ ابھی خالی ہے، ہمارے میموری کارڈ بھر چکے، بھول جاتے ہیں، دن بھر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی اچھی باتیں یاد کراؤ، تاکہ ہمیشہ آپ کو اپنے بچپن کی یادیں، باتیں یاد ہیں نا، ابھی بھول جاتے ہیں، دن بھر میں کوئی اتنا وہ میموری کارڈ فل ہو چکا آپ کا، اور جب بالکل فل ہو جائے گا تو کہیں گے پاگل ہو گیا، نسیان ہو جاتا ہے نا، بھول جاتا ہے بار بار، بھر گئی نا، جتنی میموری ڈالی تھی بھر گئی، وہ ختم ہو گیا، کارڈ ختم ہو گیا، وہی ہے جو آپ بتا دنیا میں بنا رہے ہیں نا، وہی اللہ نے یہاں ڈالا ہوا ہے، وہ ایسی سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے، بالکل فطرت الہی پہ سارا کام چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام سے نبوت کیوں لی گئی؟ ایک ترک اولا ہوا، کیا ہوا؟ ایک ترک اولا، وہ ترک اولا کیا ہوا تھا؟ آزمائش۔ اب دیکھیں انبیاء کی آزمائش کیسی، انبیاء سے ترک اولا ہو جائے تو جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے 6 مہینے تک، یہ ہے آزمائش انبیاء کی، کسی کو ایسے سزا نہیں دیتا، حالانکہ جرم تھوڑی کیا، معاذ اللہ گناہ تھوڑی کیا، ترک اولا، ترک اولا کیا مطلب؟ بہتر نہیں کیا، خراب نہیں کیا کچھ، نہیں بہتر، اللہ انبیاء سے کیا چاہتا ہے؟ اولا، اولا، اچھا نہیں، یہ تو گڈ، بیسٹ، بیٹر، بیسٹ، ایسے ہی ہے نا بھائی، مجھے انگلش انگلش نہیں آتی لیکن اتنا پتا ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایسے ہی ہوتا ہے نا جناب، اچھا، بہتر اور بہترین۔ اب یہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا بہت بہترین، تو یہ بہت بہترین کوئی لفظ ہوتا نہیں ہے، بہترین کا مطلب یہ کہ سپر ڈگری ہے، سپرلیٹیو ہے، بہترین کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ، اب اس میں بہت بہترین، ہاں بہت اچھا ہو سکتا ہے، اچھا کے ساتھ آپ بہت لگا دیں، بہت اچھا ہو گیا، جیسے گڈ کے ساتھ ویری گڈ لگ گیا، لیکن بیسٹ کے ساتھ ویری بیسٹ نہیں لگتا نا، جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں نے کہا مجھے نہیں آتی انگلش انگلش، لیکن بیسٹ کے ساتھ ویری بیسٹ لگتا ہے، نہیں لگتا، کیونکہ بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری نا، آخری ہے، تو بس بہترین کے ساتھ بہت بہترین نہ کہا کیجیے، یہ غلط ہو جائے گا، اردو کے ساتھ ظلم تو ہو رہا ہے، چینلز پہ سارا ظلم ہو رہا ہے صبح سے شام تک، کم از کم آپ نہ کیا کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، بہترین۔ اچھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اچھا بھی نہیں چاہتا، بہترین چاہتا ہے، کیونکہ نبی کے نمونہ بنا کے بھیجا ہے نا، معصوم ہے، نمونہ عمل ہے انسانیت کے لیے، لہذا بہترین چاہتا ہے، اچھا بھی نہیں، بہترین عمل ہونا چاہیے آپ سے، بہترین کام ہونا چاہیے، ترک اولا یعنی بہترین کو ترک کیا، غلط کام نہیں کیا معاذ اللہ، گناہ نہیں کیا، اولا نہیں کیا، بہترین نہیں کیا، لہذا تنبیہ ہوگی، تنبیہ ہوگی۔ تو جناب یوسف سے ترک اولا کیا ہوا تھا؟ پروٹوکول کے چکر میں بابا کا احترام رہ گیا،
जब आए हैं ना जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ, तो इस्तकबाल के लिए बाहर निकले, सवारी पे थे क्योंकि अजीज मिस्र हो चुके थे ना उस वक्त तक जनाब, खजानों के यानी वजीर खजाना खजानों पर हावी थे पूरे मिस्र के। तो प्रोटोकॉल का तकाजा ये था कि अपनी सवारी से ना उतरे। बस लोगों ने कहा, उनके मुशीरों ने कहा, आपको उतरना नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। क्या है ये? आपको अपनी सवारी पे रहना है, आप मिस्र के खजानों के वाली हैं, मालिक हैं। नहीं उतरे। अच्छा, जब नहीं उतरे तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा जरा ऊपर कीजिएगा आस्तूर के आस्तीन। देखा जनाब यूसुफ ने एक नूर है, ऐसे चला गया। ये क्या नूर था? नबूवत का। क्या मतलब? आपकी नस्ल में अब नबूवत नहीं आएगी। देखा आपने अंबिया की आजमाइश, कैसी आजमाइश है? आम आदमी से नहीं ऐसी आजमाइश, क्योंकि नबी है। क्यों जनाब यूसुफ? क्यों भाई, क्यों ले ली गई? बाप के एहतराम में क्यों नहीं उतरे? सवारी से क्यों नहीं उतरे? बेशक आप इतने बड़े मनसब के, लेकिन बाप के एहतराम में आपको सवारी से उतरना था। इसलिए बच्चों को समझाओ, जब तक आप समझाएंगे नहीं बच्चों को, अदब आएगा नहीं। अदब जब ही आएगा जब बच्चों को सिखाएंगे। बच्चे अब बड़े गुजरे, बच्चा सीना तान के गरेबा खोले चला जा रहा है कि समझता है यही अच्छी बात है। बल्कि बड़े अब तो कहते हुए भी डरने लगे, कुछ कह देंगे भी दो सुना देगा बच्चा, क्योंकि अगर बड़े ने कुछ सुना दी अभी अब्बा लड़ने आ जाएंगे, तेरी जरूरत कैसी भी मेरे बच्चे को, तूने मेरे बदमाश बच्चे को तूने ऐसे कहा, है ना? नहीं ऐसा नहीं, ये बता रहा हूं कि अगर कहीं होता है अपनी आबादियों में नहीं, खबरदार अपने बच्चों को अदब आदाब सिखाओ और अपनी तहजीब को हाथ से ना खो। यलगार हो गई है हम पर, इतनी बेहतरीन तहजीब हमारी जो हम लेकर आए, आजादारी की तहजीब, उस पर डाका डाला जा रहा है, पता नहीं कैसे क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह के बंदो, बुजुर्गों क्या हो गया? हमें तो टोकते थे बुजुर्ग जब हम छोटे थे, आज के बुजुर्गों को क्या हो गया? प्यार से समझाओ, अपनी तहजीब का दिफा करो, अपनी तहजीब को बचाओ। आजादारी तुम्हारी वो तहजीब है कि यहाँ से बच्चे अदब आदाब सीख के जाते हैं, घर में जाते हैं, उनको मालूम होता है कि बड़ा छोटे का एहतराम, बड़े छोटे का एहतराम क्या है, माँ बाप का है, पड़ोस का बुजुर्ग का है ना। तो जनाब यूसुफ को तर के औला पे उतरे नहीं, सिर्फ नबुवत सल्ब कर ली गई। तो जितना बड़ा मनसब देना है, आजमाइश भी उतनी बड़ी दी जा रही है। तो आइए बनी इसराइल का पस मंजर बता रहा था आपको, तफसील आप निकल जाएंगे। आज से मुकदमा तय करना है मुझे बातचीत का, ताकि एक तारीफ मुकम्मल हो जाए मजमून की। बनी इसराइल को अब इंतजार कर रहे हैं। बनी इसराइल वही हुआ जो जनाब यूसुफ ने फरमाया था कि मेरे बाद बिगड़ जाओगे। बिगड़ गए ना, और बिगड़ते कैसे मालूम है आपको? जब कोई बड़ा नहीं रहता ऊपर, या बड़े ऐसा होता है कि उसकी सुनते नहीं। जैसे जनाब हारून बड़े थे ना, बड़े नबी थे भाई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे, लेकिन सुनी जनाब हारून की। या तो बड़ा होता नहीं, कोई बड़ा होता है तो उसकी सुनते नहीं, जब नहीं सुनते तो क्या होता है, बछड़ों की पूजा शुरू हो जाती है। सामरी आबादियों में दाखिल हो जाते हैं अपने अपने कर्तव्य लेके। यही हुआ था ना, सामरी दाखिल हुआ और कर्तव्य लेकर आया, अट्रैक्शन था उसमें, अट्रैक्शन देखा और लोग सामरी के पीछे चल पड़े, हम इस बछड़े को पूजा करेंगे। अरे भी बछड़े को हम अल्लाह थोड़ी मानते हैं, बछड़ा तो वसीला है। वो जनाबे हारून कह रहे हैं, क्या गजब कर रहे हो, जनाबे मूसा गए हैं, वो उसके तूर के ऊपर गए हैं किताब लेने के लिए, आयात लेने के लिए, अल्लाह की किताब लेने के लिए गए, और तुम सब ये सब क्या कर रहे हो? ना जी, कौन सुनता है, किसकी सुनता है? तौरात लेने गए, यहाँ पे ये सब खेल शुरू हो गया। अब जनाब जनाबे हारून नबी है लेकिन नहीं सुनी, तो माशरे में बड़ा ना रहे कोई, या बड़े का एहतराम ना रहे तो क्या होगा? दीन के ऊपर सबसे पहले अटैक होता है, जिसकी जो मर्जी करेगा, कहेगा ये मेरा अकीदा है, जाओ क्या कर लोगे? अब आप क्या करेंगे? उसका वो कह रहा मेरा तो अकीदा यही है। अरे भाई, तेरा अकीदा तेरे घर में बनाया क्या? तुझे किसने हक दिया कि तू अकीदा बनाए? अकीदा वो है जो अल्लाह ने दिया, अकीदा वो है जो रसूल ने दिया, अकीदा वो है जो मेरे मौला ने दिया, अकीदा वो है जो मासूमी ने दिया। तू कहाँ से अकीदा बनाने वाला आ गया? फुटपाथ पे बैठ के अकीदे बना रहा है और दूसरों को भी बांट रहा है कि जी मेरा अकीदा जाए, आप क्या कर लेंगे? समझ गए अब? बनी इसराइल में क्या हुआ? तहरीफात, तहरीफात का आगाज हुआ, जिसकी जो मर्जी उसने दीन में शामिल किया, लेकिन इन तमाम तहरीफात के बावजूद एक अकीदे पे मोहकम थे। एक नतीजे पे लेकर जा रहा हूं आपको, इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप मुझे, एक नतीजे की तरफ लेके जाऊंगा। एक अकीदे में पक्के थे, न मालूम कितने ग्रोह बन गए, कितने अकीदे बन गए, हर घर में छह आदमी तो पांच अकीदे। यह हल था उनका, आज की बात नहीं कर रहा भाई, डर ना जाना, बनी इसराइल की बात कर रहा हूं। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पे, समझ में आ रही है भाई? तो बनी इसराइल, लेकिन एक अकीदा पकड़ता, वो क्या था? मूसा, मूसा जरूर आए और फिरौनियों से नजात दिलाएगा। फिरौनियों से दम निकलता था इनका, किप्टी इनको बहुत पीटते थे, बहुत मारते थे, उनसे डरते थे, आपस में शेर थे, आपस में भाई सारे निकल के आ जाते थे, तो तेरा खानदान ये, मेरा खानदान वो, उसका खानदान वो, जनाब शेर एक दूसरे पे चले दौड़ते थे, वो खुश होते थे फिरौनी के, चलो ये आपस में इनका काम हो गया, आपस में लड़े, हमारा काम आसान हो गया। मगर मैंने क्या कहा, एक अकीदा बड़ा पक्का था, वो था कि मूसा आएंगे और नजात दिलाएंगे, और यही वजह थी। अच्छा बताइए, जब ये जानते तो क्या फिरौन नहीं जानता था? सबको पता था ना कि मूसा आएंगे, बनी इसराइल का अकीदा है। अच्छा फिर मुझे बताइए कि फिरौन अगर जानता नहीं था तो उसने पाबंदी क्यों लगाई? उसके मुनज्जिमीन ने खबर दी थी ना, उसको निजोमी ने खबर दी थी कि मूसा आने वाला है, तेरा बेड़ा गर्क करने वाला है। क्या किया था उसने? बनी इसराइल के मर्द औरतों में जुदाई डाल दी, काबिलाएं बिठा दी कि कोई औरत हामला हो पेट चाक कर दो, बच्चे को भी मारो, औरत को भी मार दो। इतनी पाबंदी किसके लिए? ताकि मूसा ना आए, मूसा ना आए, मूसा ना आए। मैं सारी बातें बीच से छोड़ता हूं, बस मुझे एक बात बताइए, जब मूसा आए फिरौन के घर में पहले, आखिर फिरौन ये मूसा नाम पे राजी क्यों हुआ? भाई ये बताइए ना, एक सवाल है ना, तारीखी सवाल है, ये तारीखी सवाल है कि जब उसे मालूम था कि मूसा मेरे तख्त को गोलटेगा, तो फिर उसने गवारा कैसे किया कि मूसा नाम का आदमी मेरे बहन में पले? सवाल आ गया ना। अब मैं आपको बता रहा हूं तारीखी बात, क्योंकि अकीदा इतना मजबूत था, 600 साल से लेके 800 साल तक की इंतजार की तारीख है बनी इसराइल की, जनाबे यूसुफ से लेकर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तक, इन 600 साल में इतना अकीदा मजबूत था कि हर घर में कम से कम एक बच्चे का नाम मूसा होता था, यानी कॉमन नेम था, क्योंकि अल्लाह को लाना था, लिहाजा कॉमन नाम हो गया था, हर घर में एक मूसा, हर जगह एक मूसा। लिहाजा जब जनाबे आसिया ने अपने बच्चे का नाम मूसा रखा, तो फिर फिरौन को कोई एतराज नहीं हुआ था, क्यों? इसलिए कि माशरे में हजारों लाखों मूसा थे, ये थी अल्लाह की हिकमत। वमा करू वमा कर अल्लाह, वो अपनी चाल चल रहा था, अल्लाह अपनी मंसूबा बंदी कर रहा था। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? वरना सवाल आपके सामने मेरा, कोई जवाब ला दे मुझे कि जब मूसा से ही डर है तो मूसा नाम क्यों रखने दिया भाई? क्योंकि जानता था कि नहीं, मूसा तो नाम सबका होगा, इसको जो मेरे जमाने में इसको नहीं आने देना, और नहीं अपने ख्याल में उसे नहीं आने दिया, मगर अल्लाह का वादा था ना, कल इसमें तफसील में जाएंगे, लेकिन आज इतना रखिए, वादा था ना अल्लाह का। तो 800 साल की आजमाइश, 600 साल, 800 साल की आजमाइश, जब मूसा आ गए, जिस मूसा का इंतजार कर रहे थे उसी मूसा के खिलाफ हो गए। ये क्या बात हुई भाई? ये छोड़ दो वो छोड़ दो, फला काम छोड़ दो फला, अरे भाई अच्छा भाई लड़ना है दुश्मनों से, लड़ना है तो ये क्या बात हुई? जब हमें ही लड़ना है तो आप क्यों आए? सोचिए, जब हमें ही लड़ना था तो भाई आप क्यों आए? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाला कहे, चलो आपने, ये क्या बात हुई? पहले भी लड़ते रहे, भिड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, अब फिर हमसे ही कह रहे हैं लड़ो। भाई ऐसे ही होगा, आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे ही होगा, अंबिया के साथ ऐसे ही हुआ, रसूलों के साथ ऐसे ही हुआ, पैगंबरों के साथ ऐसे ही हुआ, नहीं लड़ोगे तो पिटाई भी होगी। उहद में भागे कि नहीं भागे? रसूल थे ना दरमियान में, उसके बावजूद पिटाई हुई। हुनैन में रसूल थे फिर भी पिटाई हुई। तो ये तो उसूल है, अल्लाह का कानून है, सुन्नत। लड़ोगे मैदान में, जमोगे तो ठीक है, नहीं जमोगे तो भाई जो जमा रहेगा उसी का नाम होगा, भगोड़ों का कोई नाम नहीं होगा, है ना? ऐसे ही है ना, ये एक उमूमी बात कर रहे हैं, पूरी उसके लिए बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो आम कायदा बता रहे हैं कि ऐसे ही होता है ना भाई, कि मैदान जंग में जो डटेगा उसी को यह हक हासिल है कि निशान हैदर सीने पे सजाया। निशान भी हैदर का सजेगा और किसी का नहीं सजेगा। या अली या अली, ओ किसी के नाम का निशान बना भी नहीं देना, मरने के बाद भी शहीद चिल्ला उठेगा नहीं चाहिए भाई मुझे ऐसी रहने दे तू बगैर तमगे के, मुझे बगैर तमगे के रहने दे, मेरी जिल्लत तो ना कर, मेरी जिल्लत तो ना कर, निशान देना है तो हैदर का निशान दे और कोई निशान नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। तो बस वो सब आए, जब मूसा आ गए तो हिल गए सारे के, नहीं ये क्या हुआ, ये हमसे कह रहे हैं लड़ो भाई, तो भाई लड़ना तो पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे दुश्मन है क्यों नहीं लड़ोगे, अंत और रब का तजबा फकातिला, आप और आपका रब जाके लड़े, हम यहाँ बैठने वाले हैं, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, आप जाइए आप लड़िए। जनाबे मूसा कह रहे कि भाई ये क्या बात हुई, लड़ना तो तुम सबको पड़ेगा, कभी आपके आने का फायदा, ऐसा इंतजार ना करना शियो, समझ में आ गई बात, ऐसा इंतजार ना करना कि वो आने वाला आ जाए, लेकिन जो जानता है कि आने वाला आएगा तो मुझे क्या करना है, वो मैदान में खड़े हैं आज भी और दिल से पुकार रहे हैं। और आपको अजीब बात एक बताऊं कि अभी जब ये सारी दुनिया जलार कर रही थी भाग गए, अब तो फिलहाल भाग गए, जब समंदरों से आ रहे थे हमला करने, तो कसम खा के मिंबर पे आपसे कह रहा हूं कि हमारे रहबर ने एक ऐसा जुमला कहा था, उस रहबर की बात नहीं कर रहा जो बड़ा है, वो छोटा रहबर, उसने एक जुमला कहा था कि आज हमारी तमन्नाएं पूरी हो गई, हम तो बरसों से इंतजार कर रहे थे कि कभी शैतानी ताकतों से हमारा मुकाबला होगा। ये होते अली के चाहने वाले, ये है अली के चाहने वाले, देख लिया दुनिया ने कि आजमाइश में कैसे पूरे उतरते हैं। आज इस्लाम पे वक्त पड़ा, मुसलमानों पे वक्त पड़ा, आइसोलेट कर दो इनको, 100 साल से जो मैं बात करता पीछे 100 साल से, अब क्या हुआ 100 साल के बाद, उनका तो मैंने बता दिया ना, चेहरों से नकाबे उतर गए सबके, एक कश्मीर के मसले ने सबके भेद खोल दिए, है ना, एक कितना सा कश्मीर का मसला, अल्लाह जब अल्लाह की मंसूबाबंदी ऐसे सामने आती है क्या हुआ, वो 56-57 जो आंखों का तारा थे, एक आंखों में खटकता था या आंखों में खार की तरह चुभता था, इस कश्मीर के मसले ने क्या किया, उन 56-57 का भेद खोलकर बताया कि तुम्हारी सारी ज्यादतियों के बावजूद, प्रोपेगेंडे के बावजूद, जब मुसलमानों पे वक्त पड़ेगा, इस्लाम पे वक्त पड़ेगा, तो जैसे उस वक्त अबू तालिब की औलाद मैदान में निकली थी, आज भी अबू तालिब की औलाद मैदान में। बेटा पानी दो, बेटा पानी दो, बात वाजे हो गई, तो इसलिए कह रहा हूं घबराओ मत, अभी देखो गैब से क्या क्या जाहिर होता है, अभी क्या क्या निकल गया था, डरना किस बात का, घबराना किस बात का, इतने बड़े बड़े इम्तिहान से गुजर गए, नहीं गुजर गए, चंद कदम के फासले पे कितना बड़ा इम्तिहान दिया था, क्या कर लिया किसी ने हमारा, जिंदा है खुदा की कसम जिंदा है, हमारी मजलिस में कमी आ गई, हमारे जुलूसों में कमी आ गई, हमारे हौसलों में कमी आ गई, ना कोई तूफान, ना कोई जलजला, ना धमाके, कोई हमारे हौसलों को शिकस्त नहीं दे सका, हम कल भी मैदान में थे आज भी मैदान में हैं, क्यों, सुनो ये मैदान का अजीब किस्सा है, इसी से आ जाऊंगा मसाइब पर, मैदान वाले मैदान में मिलेंगे और गारों वाले गारों में मिलेंगे। अरे आप पता नहीं कहां पहुंच गए, मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूं जनाबे अबू तालिब के मारके की तरह, जब अब्रहा का लश्कर हाथियों के साथ आया था, कहां दौड़े थे मक्के वाले, पहाड़ों में गारों में, कहां दौड़े थे, पहाड़ों में गारों में जाके घुस गए थे, अबू तालिब मैदान में खड़ा था, अकेला था मगर मैदान में खड़ा था, बस यही दो तारीखों मैदान वाले हैं, खुदा की कसम मैदान में मिलेंगे। हम मैदानों वाले हैं, जब ही तो हमारा ज्यादा नुकसान होता है। हम सड़कों पे निकलते हैं, आशूर हो चेलुमा, मैदानों वाले हैं। हम छुप कर नहीं लड़ते, छुप कर बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों पे वार नहीं करते। हम मैदानों में थे, कल भी मैदानों में थे, आज भी मैदान में। इसलिए कैसा घबराना, इतने हजारों शहीद देने के बाद कोई कुछ कम हुआ? क्या कम हुआ? आजादारी कम हो गई? पहले ये देखो कि झगड़ा किस बात पे, खजाना क्या है, मिल्कियत क्या है। कोई मिल्कियत छीन के ले जाए तुम हार गए, मिल्कियत छीन के ना ले जाए तो तुम जीत गए। हमला था तुम्हारी मिल्कियत पर, हमला था तुम्हारे खजाने पर, कि इनकी आजादारी बंद हो, इनकी मजलिसें बंद हो, इनके जुलूस बंद हो। अगर वो बंद हो गए, दुश्मन जीत गया। और लाखों शहीद हो जाए कोई परवाह नहीं, अगर जुलूस जारी है तो हम जीत गए। शहादतों का हिसाब थोड़ी है। अगर जानों के कम होने शिकस्त होता तो करबला में तो सब शहीद हो गए ना, कोई बचा? सब शहीद हो गए। बस जिसे अल्लाह ने बचाना चाहा था, इमामत को, चौथे पांचवें को बचा, सब शहीद हो गए। तो क्या हुआ? माज़ अल्लाह, मेरा हुसैन हार गया, आपका मौला हार गया। खुदा की कसम, तारीख में ऐसी फतह मिली हुसैन को, अगर हुसैन माज़ अल्लाह हारा होता तो ये जश्न मनाते, खुश होते, रो क्यों नहीं जिक्र को? लेकिन रो इसीलिए रहे कि हर साल मुहर्रम में हुसैन की फतह के नक्कारे बजते, यजीद पर लानत के ताक पहनाए जाते हैं, लानत बरसती है यजीद पर, लानत बरसाई जाती है, ऐसी है ना। बस कौन जीता? तुम फाते हो। हमेशा याद रखना, अली के चाहने वालों ने शिकस्त कभी तारीख में देखी ही नहीं, खुदा की कसम नहीं देखी। अली के शियों के नसीब में शिकस्त अल्लाह ने लिखी ही नहीं है। तुम हमेशा फतहमंद हो, हमेशा फतहमंद रहोगे, जानों की परवाह ना करो। इससे अच्छी और कौन सी मौत है कि मैं फर्श अज़ा पे बैठा हूं, मुझे मौत आ जाए। मौत तो आनी है ना कहीं भी, इश्क हुसैन में मर जाऊं, जिक्र करता हुआ या जिक्र सुनता हुआ, मजलिस के लिए घर से निकलूं, मौत आ जाए, इससे अच्छी कोई मौत है? मौत तो आनी है ना, बिस्तर मरस पर आ जाती है मौत, कहां नहीं आती, एक्सीडेंट होता है, मर जाता है। लेकिन ये कितनी अच्छी मौत है जो हुसैन के नाम पर आ जाएगी तुम्हें। हमेशा याद रखना, इस सबक को याद रखना कि जानों की कमी से नजरियात नहीं मरा करते। अगर ऐसा होता तो करबला में फैसला हो जाता, मगर करबला में फैसला क्या हुआ? करबला में फैसला ये हुआ कि झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने शिकस्त देखी है, उस सर को खुद उठा के चले। तुम फतहमंद हो, कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन खबरदार, फतह का राज सिर्फ इसमें है कि मजलूम की हिमायत करते रहना, और मजलूम की हिमायत करते वक्त कभी ये ना देखना कि उसका मजहब क्या है। मेरे मौला अली का फरमान क्या है अपने बेटों के लिए? कून अलि जालिम खसमन वलिल मजलूम औना, जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार रहना। अगर तुम्हारे मुल्क में गैर मुस्लिमों पर हमला किया जाए तो वो भी मजलूम है, उसकी मदद करो। वो मसीही हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, किसी मजहब का हो, उसके जान और माल का दिफा तुम पर है। तुम्हें कश्मीरी तो मुसलमान है, आसाम का जिसकी बात ही नहीं हो रही कहीं, 19 लाख जिनकी वो खत्म कर दी गई शरीयत, वो कहीं के नहीं रहे बेचारे, कहां जाएं? ना बांग्लादेश उनको लेता है, ना बर्मा, ना आसाम। कौन इन मुस्लिमों की हिमायत करेगा? खुदा की कसम, ये तशय्यो का इफ्तिखार है। इतने जख्म खाने के बाद, इतनी लाशें उठाने के बाद, क्या कुछ हमारे खिलाफ नहीं किया गया इस मुल्क में, और क्या कुछ ना करने की साजिशें हो रही हैं? हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां से ऐलान करते हैं, दुनिया का कहीं का भी मजलूम होगा, शिया ने हैदर कर रहा, उसके लिए अपनी जान भी देंगे। कश्मीर तो फिर हमारा हिस्सा है, दे चुका हूं पैगाम, फिर ये पैगाम दे रहा हूं कि सारे मसले छोड़ो, एक बार एक
नारा ऐसा है कि उस नारे से ही हम इनको भगा देंगे। बस खुलासा यह है कि मजलूम की हामी रहना, खबरदार तुम पर कितने ही जुल्म हो जाए ये जुल्म तुम्हें मजलूम की हिमायत से ना रोके। यह अहले बैत का खासा है। आओ मसाइब से पहले एक जुमला तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हारे नया हो लेकिन यह है रिवायात में है। कौन है हुसैन? हुसैन ने आखिर वक्त तक कोशिश की कि किसी तरह इनको जहन्नम की आग से बचा ले, बचा ले। आखिरी खुतबा भी नाके पर बैठ के दिया है। नाके पर जाने का मतलब ये होता था कि जंग नहीं, अमन चाहता हूं। लेकिन जब जंग का मैदान आया तो फिर हुसैन ने जंग कैसी की थी आप जानते हैं, अल अमान अल हफीज की आवाजें थी। खैर ये जब शहादत का जिंदगी रही मौका आएगा तो मैं तफसील से पढ़ूंगा, लेकिन इतना बताना चाह रहा हूं कि जब जुलजना से नीचे आए हैं ना हुसैन, जानों के बल एक रिवायत के मुताबिक आप जंग कर रहे थे, लड़ रहे थे, करीब नहीं आ रहा था कोई, जबकि सैकड़ों तीर जिसमें अथर में पेवस थे। एक जवान आया है वार करता हुआ, हुसैन ने वार रोका, उसकी तलवार गिर गई, पीछे हटने का मौका नहीं है, बस हुसैन तलवार मारेंगे, इसका सर के दो टुकड़े होंगे, इसके चेहरे का रंग जर्द हो गया, चिल्लाकर कहता है फर्जंदे रसूल अपनी मां का अकेला हूं। पूरी जिम्मेदारी से मैं रिवायत पढ़ रहा हूं, अजादारों में जिम्मेदार हूं जो पढ़ रहा हूं, फर्जंदे रसूल मैं अपनी मां का अकेला हूं। ये आया किस लिए है? हुसैन को कत्ल करने है ना, वार किया है और दिलबंदे जहरा के जिस्म पर हजारों जख्म लगे हैं, वही वार रोक लिया और रोक करके दे जा अपने मां के कलेजे की ठंडक बन जा। उस हुसैन के मानने वाले हो तुम, उस अली के मानने वाले हो जिन्होंने अपने कातिलों के साथ ये सुलूक किया है, उस हुसैन के चाहने वाले हो जिस हुसैन के बच्चों के साथ क्या किया गया। मुझे नहीं मालूम यहाँ की तरतीब क्या है, मुझे अभी बताई नहीं गई, लेकिन पहली मुहर्रम को मैं हर जगह मुस्लिम के यतीमों का जिक्र करता हूं। इन बच्चों के लिए ये मसाइब पढ़ रहा हूं, ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये हुसैन के अजादार, ये मौला के चाहने वाले बच्चे जो रात के इस पहर में तुम्हारे साथ बैठना, इनके लिए पढ़ रहा हूं ये मसाइब, इन बच्चों के लिए सुनो, मुस्लिम के दो छोटे छोटे बच्चों का हाल सुनो। जब मुस्लिम शहीद हो गए थे ना, इन दोनों बच्चों को तारीख जिंदान में डाल दिया गया था, इन्हें दिनों रात का नहीं मालूम होता था, बस जब जिंदान दारोगा जिंदान खाना लेकर शाम को आता था तो उससे इन्हें अपनी नमाजों के वक्त का तायुन कर लिया था कि अब मगरिब हो गई, अब सूरज गुरूब हो गया, उसके हिसाब से नमाजें पढ़ते थे छोटे छोटे बच्चे। आखिर एक दिन रोक लिया दारोगा जिंदा को, कहा भाई एक बात तो सुनता जा, कहो क्या बात है, कहा मोहम्मद अरबी को पहचानता है, कहता है कि क्या बातें कर रहे हो, क्यों नहीं पहचानता, कलमा पढ़ता हूं मुसलमान हूं। हिम्मत बड़ी, अच्छा उनके भाई जाफरे तैयार को भी पहचानता है, कहा हाँ क्यों नहीं पहचानता, अल्लाह ने उन्हें दो पर दिए हैं बाजुओं के बदले में, जन्नत में परवास करते हैं। हिम्मत बड़ी, कहा अलीब ने भी तालिब को पहचानता, कहा क्यों नहीं पहचानता भाई, कहा अकील को पहचानता है, कहा तुम ये सब नाम क्यों ले रहे हो, तुम कौन हो, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता, कहा हम उसी खानदान के चश्मो चराग हैं, हम मुस्लिम के यतीम हैं, हम अकील के पोते, हम हैदर कर्रार के पोते हैं, हम रसूल खुदा के पोते हैं। इतना सुंदर था कदमों में गिर गया, मुझे आज तक बताया क्यों नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे जिंदान में कौन से बच्चे, जाओ बच्चों मैंने तुमको आजाद किया, दरवाजा खुला है, रात के पहर में निकल जाओ, सुबह होने से पहले पहले कुफे से बाहर निकल जाना, और जब बच्चे जाने लगे तो कहते ठहरो एक वादा करके जाओ, देखो मैं अब मार दिया जाऊंगा, मैं अब कत्ल कर दिया जाऊंगा तुम्हें छोड़ने के बाद, मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक वादा करो कि मेरी सिफारिश करोगे कयामत के दिन मेरी शिफात करो। यह है अकीदा, इसे कहते हैं अकीदा, जान जा रही है, कलम हो रहा है सर, वादा करो कि उसे यकीन है कि मुस्लिम के बच्चों को हक शिफात मिलेगा, मिलेगा, उन बच्चों को भी हक शिफात में यकीन है, कहते हैं वादा रहा तेरे बगैर जन्नत में कदम भी नहीं रखेंगे। छोड़ दिया दोनों बच्चों को, जानते हैं कितनी दूर गए, जो लोग जियारत करके आए हैं जानते हैं ना, और जो नहीं करके आए सब मिलके दुआ करो परवरदिगार एक एक मोमिन को उन मकामात की जियारत नसीब फरमाए। मुसैयब, मुसैयब है ना उस जगह का नाम,
जहाँ दोनों मासूम बच्चों की कब्रें हैं वहां के खादिमों ने मुझ पर एक एहसान किया था और मुझे असली कब्रों तक नीचे ले गए थे। और भी लोग गए होंगे, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दुनिया में अकेला, लेकिन बहरहाल मुझे ये सआदत मिली कि मैं मासूम बच्चों की असली कब्रों पर मुझे नीचे ले गए थे, क्योंकि मजलिस पड़ा था, बस वो उनके दिल में कोई मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई और मुझे वो ले गए नीचे। मैं उनकी बच्चों की ज़ियारत करके आया, असल कब्रें जो नीचे बनी हुई है। खैर, अब वो जगह देखिए कितनी दूर है कूफे से, मुख्तलिफ रास्ते, कहीं से 90 किलोमीटर, कहीं से 100 किलोमीटर, कहीं से 70 किलोमीटर। रात भर ये बेचारे चलते रहे, कूफे से निकल गए, यहां तक आए। सुबह होने लगी, फजर का वक्त यानी नमाज का वक्त हुआ, नहरे कूफा के साहिल पे, साहिल के साथ जोहड़ होते ना तालाब छोटे छोटे, वहां वजू किया, दोनों ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दरस पे चढ़ गए, छुपा लिया कि सारा दिन छुपे रहेंगे, जब रात होगी फिर चलेंगे मदीने की जाने सफर करेंगे। लेकिन इतने में ज़ौजे हारिस की कनीज उस जोहड़ पे तालाब पे पानी भरने आई, पानी भरने लगी तो क्या देखा, पानी में दो चांद से चेहरों का अक्स पड़ रहा। हैरान होकर कहती है, मैंने इतने हसीन चेहरे पहले नहीं देखे, किस ममलिकत के शहजादे हो तुम, कहां से आए, मत डरो, अमान है, नीचे आ जाओ। दोनों बच्चे नीचे उतरे, कब बताओ अपना हाल, बताओ तुम्हें अमान है, मुझे बताओ तुम्हें कुछ करूं। कब, बस मोमिना कोई नेकी करना चाहती तो बस इतनी नेकी कर दे, हमें मदीने का रास्ता बता दे, हमें मदीने के रास्ते पर डाल दे। कहा मेरे प्यारे बच्चों, इस वक्त तुम मदीने जाने के रास्ते पर नहीं जा सकते, मदीने वाले रास्ते पर, मुझे बताओ अपना हाल ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। कहा मुस्लिम के यतीम है मोमिना, मुझसे हमारे बाबा को कूफियों ने बेवफाई की, दगा दी, हमारे बाबा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, हम जिंदान से निकले हैं, हमें मदीने जाना है। कहती है चलो जल्दी करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मालिकन मुहिब्बे अहले बैत है, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, ऐसा ना हो कि रोशनी हो जाए और लोग काम पे निकले तुम पहचान नहीं जाओ। जल्दी जल्दी दोनों को घर लेकर आई और माँ ज़ौजे हारिस ने जैसी देखा मुस्लिम के बच्चे हैं, खुश हो गई और बच्चों को इत्मीनान दिला दिया, मुतमईन हो जाओ, कल एक काफिला जाने वाला है उसके साथ मदीने भेजूंगी, शहजादियों को मेरा सलाम कहना, रसूलजादियों को मेरा सलाम कहना। उसके बाद बच्चे ना जाने कब से जिंदान में थे, नहाए धोए, नया लिबास दिया, गिजा तैयार की अपने हाथ से, बच्चों को गिजा देती जाती है। शाम हुई, एक कोठरी में लेकर आई, कब बच्चों मुझे माफ कर देना, मगर रात तुम्हें इस कोठरी में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा शौहर इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुलाजिम है, मुझे डर है इनाम के लालच में तुम्हें हाकिम वक्त के हवाले न कर बैठे। बंद किया कोठरी में, बाहर से कुफल डाल दिया, आ गई, बहुत देर से आया हारिस, जब देर से आया तो पूछा इस मोमिना ने देर क्यों हुई, कहने लगा मुस्लिम के बच्चे जिंदान से फरार हो गए, इब्ने ज़ियाद ने बहुत बड़ा इनाम रखा है, ढूंढता रहा सारा दिन मगर नहीं मिले। कहा छोड़ उन बच्चों का पीछा, खानदान रिसालत के बच्चों के पीछे पड़ा है, क्यों अपनी आकिबत खराब करता है। खैर, खाना वाना खाया, सोने लेट गया, थोड़ी देर गुजरी थी कि छोटे भाई की आंख खुली, भाई का शाना पकड़ के हिलाता है, भैया उठो, भैया उठो। बड़ा भाई उठा, क्या बात है, कहते मैंने अभी ख्वाब देखा। पूछता है बड़ा भाई, क्या ख्वाब देखा? कि मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा और रसूल खुदा की खिदमत में हमारा बाबा मुस्लिम आया है। रसूल खुदा पूछ रहे मुस्लिम से, मुस्लिम मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ कर आए हो? हमारे बाबा की आंखों में आंसू हैं, वो फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चे इब्ने ज़ियाद मलून की कैद में है। रसूल ने बाबा को सीने से लगा कर कहा, मुस्लिम इत्मीनान रखो, बस अभी कुछ देर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ रहे हैं। बड़ा भाई कहता है कि भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा। दोनों भाइयों को अपनी शहादत का यकीन हुआ और एक दूसरे के गले में बाहें डाल के चिमट के एक दूसरे से रोना शुरू किया। गिरिए की आवाज बुलंद हुई, हाँ इसे मलून की आंख खुली, तलवार उठा के दौड़ा बाहर की तरफ। ये बच्चों के रोने की आवाज मेरे घर से आती है। मोमिना पीछे पीछे दौड़ी, आगे बढ़ा, आगे बढ़कर तलवार का वार किया, कुफल को तोड़ा, ठोकर मार के दरवाजा खोला। अब जो अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा, दोनों मासूम बच्चे एक दूसरे से चिमटे हुए रो रहे, गुस्से में आगे बढ़कर ठोकरों से मारना शुरू किया। इतना मारा बच्चों के सर चेहरे लहूलुहान हो गए, दंदाने मुबारक टूट गए। रस्सी से बांधा दोनों बच्चों को, घसीटता हुआ लाया कि जरूर कत्ल करूंगा तुम दोनों को। गुलाम को साथ लिया, बेटे को साथ लिया, पीछे पीछे ये मोमिना फरियाद करती जा रही है, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, छोड़ दे इन मासूम बच्चों को, मैंने अमान दी थी मगर इसने कुछ ना सुना। साहिल पर लेकर आया, इसी जगह जहां रोजे हैं इससे थोड़ा सा फासले पे
ساحل پہ چبوترے پہ دونوں بچوں کے قتل کا ارادہ کرتا ہے, غلام سے کہتا ہے قتل کر دے. غلام آگے بڑھا اور بچوں نے کہا کیا تو بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ کہتے کیوں, تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ بچے کہتے کہ ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے, ہمارے جد رسول اللہ کا موذن تھا, یہ سننا تھا. تلوار پھینکی اس حبشی غلام نے, چھلانگ لگا دی نہر میں کہ یہ گناہ نہیں کر سکتا, خاندان رسالت کے بچوں کے سروں پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. جھنجھلا کر بیٹے سے کہا قتل کر دے ان بچوں کو. بیٹا آگے بڑھا, ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی. بیٹا پیچھے ہٹ گیا, اب یہ آگے بڑھا. بچے کہتے اتنا ٹھہر جا, ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دے. یہ معصوم بچے سجدے میں گئے, تلوار لے کر آگے بڑھا, پہلے بڑے کا سر تن سے جدا کیا, سر اپنے پاس رکھا, جسم کو نہر کے حوالے کیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لیتا جاتا ہے, کہتا جاتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا, مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا. بڑے بھائی کا جسم سطح آپ پر ٹھہر گیا, بس ادھر چھوٹا بھائی کروٹیں لے رہا تھا, اس ملون نے دوسرا وار کیا, چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا, سر اپنے پاس رکھا, جسم کو نہر کے حوالے کیا. دونوں بے سر کے لاشے بغل گیر ہوئے, کہے آپ بیٹھ گئے. سنو آخری جملے, صبح ہوئی, کسان جا رہے ہیں کھیتوں میں کام کرنے, کیا دیکھا ساحل پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے, سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس کوئی بیوی بیٹھی ہے, زار و قطار رو رہی ہے. کسان آگے بڑھے, پوچھا بیوی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان اندر گر گیا؟ وہ بیوی کہتی ہے ہاں ہاں, اس ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا, میری مدد کرو, میرے بچوں کی لاشیں نکالو. وہ کسان نہر میں اترے, دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے, یہ بیوی دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی, کبھی ایک ہاتھ بام کے, کبھی محمد کے سر پہ, کبھی ابراہیم کے سر پہ, یہ مسلم کے دونوں بیٹوں کے نام ہیں. ابھی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے, کٹے ہوئے گلے پہ ہاتھ رکھتی ہے, روتی جاتی ہے, ان کسانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی ہے, میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں, میں شفاعت کروں گی. وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بیوی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی ضمانت دیتی ہے؟ آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بیوی کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی ماں کوئی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں, اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں. سمجھ گئے نازدارو, کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم کے لاشے پر فاطمہ آئے, عباس کے لاشے پر آئے, اور محمد کے لاشے پر آئے, قاسم کے, علی اکبر کے, اور حسین تو زہرا کیا آغوش میں ذبح. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائیں اور زہرا ان کا مقتل کرے؟
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. Thank you.